विचार चल रहा है पंचदशी ग्रंथ के कुष्ठस्थ दीप प्रकरण में। दो प्रकार के ज्ञान है, एक नित्य ज्ञान, दूसरा है अनित्य ज्ञान। तो अहम अर्थ नित्य ज्ञान स्वरूप है, तो अहम अर्थ जब तक शोधित नहीं होगा विवेक के द्वारा, तब कुटस्थ ब्रह्म के साथ अभेद नहीं होगा। इसलिए अनित्य ज्ञान से नित्य ज्ञान का विवेक किया जा रहा है, जो कि अहम शब्द का वास्तविक अर्थ है, लक्षार्थ है। इसी बात को स्वामी भारती तीर्थ दृष्टांत के द्वारा निरूपण कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में दृष्टांत है। श्लोक का संक्षिप्त विचार हम लोग किए थे कल, एक बार फिर उच्चारण कर लिया जाए। खादित्य दीपिते कुड्ये दर्पणादित्य दीप्तिवत् कूटस्थ भासितो देहो धिस्थ जीवेन भास्यते। श्लोक का पूर्वार्ध है दृष्टांत। दृष्टांत दृष्टांत के लिए होता है, इसलिए उत्तरार्ध है दृष्टांत अथवा दृष्टांतिक भी कहते हैं। तो आकाशस्थ भगवान सूर्य है, उसका प्रकाश पड़ता है दीवार में, इसलिए कुड्य का अर्थ दीवार। तो दीवार के एक देश में पड़ेगा कि पूरे देश में पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश पूरे देश में पड़ेगा ना, सामान्य हो गया वो। हाँ, एक सामान्य ज्ञान जिसको नित्य ज्ञान कह रहे हैं यहाँ पर, और एक विशिष्ट ज्ञान होता है अनित्य ज्ञान। और क्या कर दिया कि जमीन पर रख दिया दर्पण, अनेक प्रकार के दर्पण को रख दिया, गोलाकार है, चतुष्कोणाकार है, त्रिकोणाकार है। अब दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, उसको कहेंगे दर्पण आदित्य, है ना? उसकी दीप्ति, उसका प्रकाश है ना, वो प्रतिबिंबित हो गया ना प्रकाश। वो सत्य होगा कि मिथ्या होगा? मिथ्या है ना। तो मिथ्या से भी कार्य कुछ हो जाता है? हो जाता है, है ना? तो सपनों में जो है, सपनों में भूख लग रही है, सपनों का भूख सपनों के लड्डू से जाएगा कि नहीं जाएगा? सपनों का भूख कहा मैंने, जागृत का नहीं कहा। है कि नहीं? और किसी का माथा फूट सकता है डंडा से? सपनों में फूट सकता है? सपनों का सिर कह रहा हूं मैं, जागृत का नहीं कह रहा हूं। कार्य हो जाता है, है ना? तो दर्पण में जो आदित्य है, उसकी दीप्ति से, उसके प्रकाश से भी दीवार प्रकाशित होता है। वो जो दर्पणस्थ सूर्य प्रकाश दीवार के एक देश में पड़ेगा, पूरे देश में नहीं पड़ेगा। तो दोनों से भास रहा है, सूर्य के प्रकाश से भी दीवार भासता है और दर्पण सूर्य के प्रकाश से भी, वो हो गया विशिष्ट प्रकाश न। और आकाशस्थ सूर्य का प्रकाश सामान्य प्रकाश, तो दो प्रकाश हो गए। देखो दो प्रकाश हो गए। ठीक इसी प्रकार दृष्टांत में कह रहे हैं, ये जो शरीर है, शरीर कुटस्थ भासित देह है ना, तो कुटस्थ से प्रकाशित होता है शरीर, कुटस्थ से। जैसे दीवार आकाशस्थ सूर्य प्रकाश से प्रकाशित होता है, इस प्रकार शरीर भी कुटस्थ से प्रकाशित होता है ना। लेकिन एक अंतकरण आ गया, बुद्धि, बुद्धि आ गई ना, तो बुद्धि तो स्वच्छ है, इसलिए उस बुद्धि में कुटस्थ का प्रतिबिंब पड़ेगा, उसका नाम क्या हो गया, जीव, उसका नाम जीव अथवा चिदाभास है ना। तो जीव चेतन हो गया कि जड़ हो गया, क्या है, चेतन हो गया ना। हाँ, तो कैसा चेतन, विशेष चेतन कहेंगे, हाँ चिदाभास कहेंगे, चिदाभास कहेंगे। तो एक कूटस्थ चेतन हो गया और एक चिदाभास चेतन, विशिष्ट चेतन को चिदाभास को, उस चिदाभास से भी शरीर भासता है, इसलिए दोनों से भास रहा है। इसका आगे और व्याख्यान करने वाले हैं। इसलिए पहले आप लोगों को बता दिया, इसका आनंद लेना है तो आराम से चलना होगा, है ना। टीका में देख लो, ये तो श्लोक का हो गया था कल। टीका में खादित्य दीपित्ते, ये तो प्रतीक लिया श्लोक में, जैसा है ऐसा लिया, खादित्य दीपित्ते, इसका अर्थ करते हैं टीकाकार। पहले सप्तमी तत्पुरुष कर लो, खे आदित्य खादित्य, ख मतलब आकाश, आकाश में जो आदित्य है उसका नाम हो गया खादित्य, दीर्घ हो गया खादित्य, खे आदित्य खादित्य। लेकिन खादित्य क्या है, ये खादित्य तो हम जानते नहीं, कहते हैं प्रसिद्ध सूर्य, ये ऊपर दिख रहा है ना सूर्य, ये प्रसिद्ध है, है? क्या ये, हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण से ये सब लोग जानते हैं, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, इसलिए कह दिया प्रसिद्ध सूर्य, इसी का नाम हो गया खादित्य। अच्छा, तो वो दीवार को प्रकाशित करेगा, लेकिन सूर्य का संबंध बनेगा तब तो प्रकाशित करेगा दीवार को, इसलिए सूर्य प्रकाशित करेगा कि सूर्य का प्रकाश प्रकाशित करेगा, इसलिए सूर्य का साक्षात संबंध दीवार के साथ नहीं होगा, है ना। प्रकाश के माध्यम से सूर्य का संबंध दीवार के साथ होता है ना। इसी बात को लिखते हैं, देखो तेनच, तेना कहने से प्रसिद्ध खादित्य सूर्य के द्वारा, है ना। लेकिन उससे दीवार कैसे होगा, तत्संबंधी आलोक लक्षते, खादित्य शब्द से यही लक्षणा करनी चाहिए, है ना। किस शब्द की लक्षणा कह रहे हैं, खादित्य शब्द की लक्षणा, जैसे गंगा शब्द की लक्षणा गंगा तीर में करते हो, बराबर ना, गंगायाम घोषक। ठीक इसी प्रकार खादित्य शब्द की लक्षणा आलोक में कर रहे हैं, प्रकाश रश्मि में कर रहे हैं, है ना। ये देखो तत्संबंधी आलोक, सक्य संबंधो लक्षणा है ना। जैसे गंगा पद की लक्षणा किसमें किया आपने, गंगा तीर में। गंगा का मुख्यार्थ हो गया प्रवाह, जल बहरा है, उसका संबंध किसके साथ है, तीर के साथ। ये गंगा प्रवाह संबंधित तीर है ना अर्थ हुआ। ठीक इसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं खादित्य हो गया सूर्य, उसका संबंधी कौन हो गया, आलोक प्रकाश रश्मि। इसलिए आलोक को यहां पर लेना है खादित्य शब्द से है ना, किस वृत्ति से, लक्षणा वृत्ति से, इसको कहते हैं लक्षते। तेना, तेना का अर्थ क्या हुआ, सूर्य संबंधी आलोक के द्वारा है ना। दीपिते, श्लोक में ही दीपिते, दीपिते का अर्थ बोलते हैं प्रकाशित, प्रकाशित हो गया, प्रकाशित हो गया मतलब भान हो रहा है, दिख रहा है ना। कौन दिख रहा है, कुड्डे, कुड्डे दिख रहा है, दीवार दिख रहा है ना। अच्छा तो ये तो सामान्य प्रकाश हो गया, सामान्य प्रकाश, चाहे दीवार जो है सीधा हो, चाहे टेढ़ा हो, चाहे कैसा भी हो, वो सबको प्रकाशित कर देगा है ना। ये नहीं बोले कि दीवार टेढ़ा है इसको प्रकाशित ना करे, सामान्य में ऐसा जो है भेदभाव नहीं होता है ना, ये ध्यान में रखिए। तो पहुंचना है यहां तक, पहुंचना है कहां तक, सामान्य तक पहुंचना है, विशिष्ट तक, तो विशिष्ट में तो है ही हम लोग, इसको छोड़ करके जो है सामान्य में पहुंचना है, ये लिए बहुत कठिन है। तो आगे दर्पण आदित्य दीप्तिवत श्लोक में आया है ना। तो कहते हैं दर्पण में आदित्य मतलब क्या, दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है ना सूर्य का, सूर्य की रश्मि पड़ेगी, ये कह रहे देखो दर्पणेषु आदित्य, पहले ऐसा अर्थ करना है, दर्पणेषु आदित्य, दर्पण आदित्य सप्तमी तत्पुरुष, दर्पणेषु निपत्य, दर्पण में रश्मि पड़ करके है ना, पड़ करके गिर करके। आगे सूर्य की रश्मि पड़ी दर्पण में और दर्पण का मुंह जिधर होगा रश्मि भी उधर जाएगी, प्रतिफलित रश्मि है ना, लौटेगी वो ऐसा होता है। इसलिए आगे लिखते हैं पर्यावृत्त्यच, आपकी पुस्तक में क्या लिखा है, हाँ ऐसा नहीं होना है, पर्यावृत्त्यच ऐसा सुधारो उसको, हाँ ऐसा नहीं, पर्यावृत्त्य जैसे निपत्य हुआ ना, इसी प्रकार करना है पर्यावृत्त्यच, मतलब लौट करके। फिर बोलूं एक बार पर्यावृत्त्यच ऐसा सुधारना है, मतलब क्या हुआ लौट करके, पहले गिरेगा उसके बाद लौटेगा है ना, ऐसा होता है। जैसे स्वर्ग से गिरता है मनुष्य, गिरेगा कि नहीं स्वर्ग से, फिर कर्म करेगा तो फिर लौटेगा स्वर्ग में है ना, ऐसा होता है। और नहीं करेगा और गिरता जाएगा नीचे नरक की ओर। तो निपत्य उसके बाद पर्यावृत्त्य च, तब रश्मि लौटेगी तो दो क्या हुआ, कुड्य संबंधेर आदित्य रश्मि फिर, तो आदित्य की जो रश्मि है प्रतिफलित रश्मि जो है उसका संबंध हो गया कुड्य, दीवार के साथ संबंध हो जाएगा है ना, तब दीवार भी भासेगा उससे है ना, विशेष रूप से दीवार भासेगा, विशेष रूप से। इसी को कहना देखो कुड्य संबद्धेर आदित्य रश्मि भीर, रश्मि भीष, तत्प्रकाशनम, उससे जो दीवार प्रकाशित हुआ उसका जैसा प्रकाश होता हुआ, इसी प्रकार यहां पर समझना है शरीर में, है ना। ये कह रहे हैं देखो, कुटस्थ भाषित, कुटस्थ से प्रकाशित हुआ कौन कौन हो रहा है यहां पर, शरीर, शरीर को ले रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कुटस्थ कैसा होता है, विकारी होता है या अविकारी होता है, है ना। विकारी हो क्या, विकारी अविकारी, ये लिखे हैं देखो, कुटस्थ न अविकारी चेतन है ना, कुटस्थ उसको कहा जाएगा जिसका विकार ना हो, कुटवत तिष्ठते थी कुटस्थ, कुट जानते हैं, हाँ, इसमें लोहे को पहले गर्म किया जाएगा उसके जिसमें रख कर कुटेंगे, हाँ, बराबर ना, उसका नाम यहाँ पर संस्कृत में कूट, कूट कहा गया, तो उसमें कोई विकार नहीं होता है, हाँ, इसी प्रकार ये ब्रह्म कूट है, कूट हो गया, इसमें सब जितने है ना, कभी टेढ़ा हो रहा है, कभी जो है सीधा हो रहा है, कभी 5 फुट का हो रहा है, कभी 6 फुट का हो रहा है, नहीं हो रहा ये, है ना, ऐसा है। कभी 1 इंच का भी हो जाएगा, कीड़ा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाता है, कभी गोरा कभी काला। तो ये है देखो, एक अविकारी होता है और बाकी सब उसमें विकारी हो जाते हैं, हाँ, सत अंश को लेकर के यहां पर कह रहे हैं कुटस्थ, सत अंश को, उसका अस्थि भी कुटस्थ है, उसका चीत भी कुटस्थ है और उसका आनंद भी कुटस्थ है, तीनों उसका कुटस्थ है, वहां तक पहुंचना है। वो किस शब्द का अर्थ है, वो अरे किस शब्द का अर्थ है, अहम शब्द का अर्थ, वो तो चल रहा है ना, त्वम शब्द का अर्थ, अहम शब्द का अर्थ। कुटस्थेन अविकारी चैतन्येन, वो अविकारी चेतन है, भाषित मतलब प्रकाशित, देह ये शरीर प्रकाशित होता है, शरीर जाना जाता है, और चिदाभास से भी जाना जाता है, चिदाभास से, ये कह रहे धिष्ठ जीवेन, इस श्लोक में आया धिष्ठ जीवेन, धी जानते हैं किसका नाम, धी बुद्धि का नाम, धी है बुद्धि का नाम, धी हो गया, है ना, ये कह रहे हैं भाई, धिष्ठ जीवेन मतलब बुद्धिस्थ चिदाभासेन, कुटस्थ जो चेतन है ना, वो इसका प्रतिफलन होता है बुद्धि में, बुद्धि में प्रतिफलन होता है, इसीलिए जो है ना बुद्धि भी चेतन की तरह मालूम पड़ती है, है ना। तो जो है घटपटादि में भी चेतन है कि नहीं, सामान्य है, वो सामान्य है, विशिष्ट नहीं है, क्यों नहीं है विशिष्ट, हाँ, वो स्वच्छ नहीं है, मलिन है, वो घटपटादि कैसा है, मलिन है, स्वच्छ नहीं है, इसलिए उसमें प्रतिफलन नहीं होता है, विशिष्ट चेतन वहां पर नहीं, पकड़ में है ना। लेकिन बुद्धि कैसी है, स्वच्छ है, सात्विक है, सात्विक है, सात्विक मतलब सत्वगुण का बाहुल्य, ये समझना है, क्योंकि सारा संसार ही त्रिगुणात्मक है, तो बुद्धि भी त्रिगुणात्मक है कि नहीं, नहीं है, है ना, है, यदि न होता फिर काम क्रोध लोभ ये सब कैसे हो रहा है, हाँ, नहीं रह सकता है, हाँ, लेकिन सत्वगुण का बाहुल्य होने के कारण बुद्धि को सात्विक बोल देते हैं, है ना, ऐसा है, इसलिए बुद्धि सात्विक होने पर उसमें चेतन का प्रतिबिंब पड़ना, है ना, चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है, तो चेतन का प्रतिबिंब पड़ना समझ में ना, वही चेतन का रहना और क्या है, चेतन का तादात्म्य होना बुद्धि में, यही बुद्धि में रहना है कि नहीं। कूटस्थ तो व्यापक है, कूटस्थ जब व्यापक है उसको जगह कैसे मिलेगी? बुद्धि तो एकदम छोटी चीज है और कूटस्थ बहुत बड़ी चीज है, व्यापक चीज है, और व्यापक चीज है छोटी मोटी चीज में कैसे रहेगी? रह नहीं सकती ना, पकड़ में है कि नहीं। हाँ, फिर कैसे कह रहे हैं बुद्धिस्थ चित्त, बुद्धि के साथ तादात्म्य कर लेना, यही बुद्धि में रहना है। समझ में नहीं तो भाई स्थूल शरीर अभिमानी का नाम क्या है? विश्व बोल दिया ना, विश्व बोल दिया, भैंस प्रज्ञा मांडी के मैं कहा कि नहीं, भैंस प्रज्ञा उसका नाम विश्व हो गया। तो विश्व का स्वरूप जो है व्यापक है कि परिच्छिन्न है? व्यापक है। तो व्यापक यदि है तो स्थूल शरीर में कैसे रहेगा चेतन? तो स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य कर लेना, यही स्थूल शरीर में रहना है। नहीं तो जो व्यापक तुरीय चेतन उसको जगह कैसे मिलेगी? और मैं ना जैसे मान लो परिव्राजक साधु हो है ना, तो उसके लिए कोई जगह है क्या? कहाँ जगह है? कोई जगह नहीं है। लेकिन एक 3x4 फुट की जगह हो, मान लीजिए आसन लगा दिया कहीं पर, और मान लिया कि ये मेरी जगह है, ये आसन लगा है मेरा, तो जगह मिल गई कि नहीं? अभिमान कर लिया तो जगह मिल गई, और अभिमान ना करे तो क्या है? सब उन्हीं का है, व्यापक है ना। ये कहे बुद्धि में चेतन का तादात्म्य होना, प्रतिफलन होना, यही बुद्धि में चेतन को रहना है, ऐसा है। इसलिए बोलते हैं बुद्धिस्त चिदाभास, उसका नाम क्या होगा? चिदाभास हो जाएगा। चेतन है ही नहीं लेकिन चेतन की तरह मालूम पड़ता है। कौन मालूम पड़ती है? बुद्धि, है ना। इसलिए बुद्धिस्त चिदाभास, तो चिदाभास जो हुआ किसका नाम हुआ? एक का नाम हुआ कि दोनों का नाम हुआ? दोनों का समझ लो, दोनों का नाम हो गया। प्रतिफलन बुद्धि के बिना नहीं हो सकता है। चिदाभास जो है ना बुद्धि के बिना होगा नहीं होगा। तो केवल आभास का नाम हुआ कि बुद्धि का नाम हुआ कि दोनों को मिलाकर के? दोनों को मिलाकर। और कूटस्थ को तो छोड़ नहीं सकता है, कूटस्थ तो अधिष्ठान है ना, पहले भी आप लोगों को बताया था। पर्दा हो और वृक्ष हो, और वृक्ष में फल पुष्प वगैरह हो, तो फल पुष्प का आधार कौन होगा? कि वृक्ष है, भले ही दिखता हो लेकिन आधार तो पर्दा है। सच में ना, इसलिए बुद्धि के बिना आवास नहीं हो सकता है, बुद्धि के बिना आवास नहीं हो सकता है। लेकिन कूटस्थ के बिना बुद्धि कहां पर रहेगी? इसलिए कूटस्थ भी चाहिए, है ना। तो देख लो, इसलिए विशिष्ट विशिष्ट बोल देते हैं। बुद्धिस्त चिदाभास हो गया, तो बुद्धिस्त चिदाभास ये अनित्य ज्ञान है, अनित्य ज्ञान है ना। तो अनित्य ज्ञान के द्वारा भी कार्य होता है, मिथ्या कारण से होता है, मिथ्या कारण से भी मिथ्या कार्य हो जाता है ना। और क्या, मिथ्या कारण से मिथ्या कार्य, मिथ्या कार्य करने के लिए सत्य की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ में ना। और क्या भाई, स्वप्नों का भोजन बनाने के लिए है ना, तो कौन सा सामान चाहिए? जागृत का चाहिए क्या? स्वप्न का है ना, स्वप्न का भोजन से ही सामग्री सब बन जाएगी है ना, और भूख भी मिट जाएगी, मिट जाती है, जागृत की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। ठीक इसी प्रकार दृष्टांत में समझ लो कि बुद्धिस्त चिदाभास जो है शरीर को प्रकाशित करेगा, शरीर को प्रकाशित करेगा। तो शरीर सत्य है कि मिथ्या है? हा? कौन सा, स्वप्नों का कि जागृत का? दोनों का है ना। हाँ तब समझ में आ रहा है तब तो समझ में आ रहा है। तो जागृत का शरीर भी कैसा है, मिथ्या है, क्यों सत्य तो एक ही है। इसलिए जागृत का शरीर भले ही आप व्यवहारिक मानते हो है तो मिथ्या। इसलिए इस शरीर जो मिथ्या है इसको प्रकाशित करने के लिए सत्य की आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं है सत्य पदार्थ की। इसलिए बुद्धिस्त चिदाभास जो मिथ्या है वो भी मिथ्या ही है। इसलिए चिदाभास मिथ्या होने पर भी है ना ये मिथ्या शरीर प्रकाशित उससे हो सकता है ना, ये बोलते हैं। बुद्धिस्त चिदाभासे न भाष्यते प्रकाशते, प्रकाशित होता है कौन होता है, देह मिथ्या शरीर प्रकाशित होता है। तो दो हो गए चेतन, एक कूटस्थ चेतन हो गया और एक चिदाभास अनित्य चेतन हो गया, धन में ना ये कह रहे। अनेना सामान्यतो विशेषतश्च कुड्य अभासक आदित्य प्रकाश द्वयम् इव दृष्टांत हो। दृष्टांत में जैसे आकाशस्थ सूर्य प्रकाश और दर्पणस्थ सूर्य प्रकाश, धर्म है ना। तो दर्पणस्थ सूर्य प्रकाश कितने हैं, अनेक हो सकते हैं है ना, लेकिन आकाशस्थ सूर्य प्रकाश कितने होंगे, एक ही होंगे है ना। तो एक सामान्य प्रकाश से भी दीवार प्रकाशित होता है और विशिष्ट दर्पणस्थ प्रकाश से भी दीवार प्रकाशित होता है ना। ठीक इसी प्रकार इव उसी प्रकार से यहां पर भी देह दो चेतन हो गए, देह अभासक चेतन द्वयम अस्ति है ना। इस शरीर के अभासक चेतन दो हो गए, एक कूटस्थ चेतन दूसरा चिदाभास विशिष्ट चेतन अनित्य चेतन है ना। ये तो प्रतिज्ञा मात्र कर लिया, इसको समझना है और बुद्धि में बैठाना है ना। इसलिए टीका का लिखते इति प्रतिज्ञातम भवति, ये तो केवल प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। कैसे दो प्रकार का चेतन मानना चाहिए इसी बात को आगे स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं। आगे विचार करते हैं। ननु एक शंका करता है कोई, तत्र दर्पण आदित्य दीप्ति व्यतिरेकेण खादित्य दीप्तिर नोपलभ्यते इति आशंक्य, वो आशंका करता है। अच्छा महापुरुष लोग आशंका क्यों करते हैं, क्योंकि जो सिद्धांत है ना वो स्पष्टतया हाँ मालूम पड़े, निश्चय हो जावे बुद्धि में, इसलिए शंका करते हैं। कहते हैं दर्पण आदित्य की दीप्ति वो प्रकाश वही तो दिखता दीवार में, और दीवार में कोई सूर्य का प्रकाश तो दिखता नहीं है, शंका क्यों कोई करता है। ये बोलते हैं खादित्य दीप्ति न उपलब्ध, खादित्य का जो प्रकाश है वो तो दिखता नहीं दीवार में। ऐसी आशंका किसी के मन में हो सकती है, तब इसका समाधान करते हैं नहीं अलग अलग है, दर्पणस्थ आदित्य का प्रकाश भी है और आकाशस्थ सूर्य का प्रकाश भी है। ये बोलते ताभ्य स्ताम विवज्य दर्शयति, ताभ्य ये अलग पद हो गया, ताभ्य कहने से दर्पणस्थ आदित्य प्रकाश विशिष्ट प्रकाश से, वो अनेक हो गया विशिष्ट प्रकाश, जैसा दर्पण होगा ऐसा प्रकाश मालूम पड़ता है ना, ये कह रहे। इसलिए विशिष्ट प्रकाश से ताभ्य का अर्थ हुआ ताम, ताम कहने से आकाशस्थ सूर्य की दीप्ति प्रकाश वो अलग है। हाँ इसी प्रकार यहां पर भी समानांतरष्टांत में जो बुद्धिस्त चिदाभास है ना उससे कूटस्थ चित नित्य ज्ञान अलग है, तो मानना ही पड़ेगा ये आगे कहने जा रहा है। विभाग करके दिखाते हैं स्वामी भारती तीर्थ महाराज, उच्चारण किया जाए, अनेक दर्पणादित्य दीप्ति नाम बहु संधिशो इतरा व्यज्यते तासा मभावेपि प्रकाशते मभावेपि प्रकाशते। श्लोक है ना, अनुष्टुप छंद है, तो एक श्लोक में कितने पाद होते हैं जानते हैं? पाद पाद चार पाद होते हैं, चार पाद होते हैं है ना। जैसे आत्मा के भी कितने पाद है, अयम आत्मा चतुष्पाद, चतुष्पाद हो गया ना। इसी बात श्लोक के भी यहाँ पर चार पाद है अनुष्टुप छंद के। तो पूर्वार्ध में दो पाद होते हैं, उत्तरार्ध में दो पाद होते हैं है? तो ऐसा होता है पूर्वार्ध में जो दो पाद हो गए, एक पाद में आठ अक्षर होंगे, आठ अक्षर होंगे, आठ अक्षर में स्वर वर्ण, स्वर वर्ण आठ होंगे, तो आठ हो गए तो एक पाद हो जाएगा है ना। इसलिए आठ जहां पर पूरा होगा वहीं पर रुकना पड़ता है, यति यति बोलते हैं छंद में, वहां पर रुकना, विश्राम करना, फिर आगे फिर अलग पाद होता है। जैसे तीसरा पाद देखो क्या है, इतरा व्यज्यते, आगे क्या बोलेंगे, तासा बोलेंगे, तासाम बोलेंगे, हाँ ऐसा होता है ना। आगे फिर चतुर्थ पाद में क्या बोलेंगे, हाँ महाव्यपी, ऐसा उच्चारण किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग विद्वान लोग भी ऐसे समझाते हैं कि इतरा व्यज्यते तासाम ऐसा बोल देते हैं, आगे क्या बोलेंगे अभाव्यपी, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे वो कुछ लोग हंसते हैं कि इतरा व्यज्यते तासा, आगे मोहावे भी पढ़ेंगे ना कुछ लोग, क्या बोलते हैं इनको पढ़ना नहीं आता है। लेकिन ये परंपरा नहीं है, तोड़ करके नहीं पढ़ा जाता है, व्याख्यान के समय में बोल सकते हो। जैसे श्रीमद भगवद गीता पंचदश अध्याय पढ़ते ना, ऊर्ध मूल मध क्या बोलेंगे, शाखम बोलेंगे, शाखा बोलेंगे, ऊर्ध मूल मध शाख ऐसे बोला जाएगा, मस्वत्थम प्राहुरा व्ययम, ऐसे नहीं कि ऊर्ध मूल मध शाखम ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा, इसको दोष माना जाता है, दोष लगता है। अच्छा तो जानबूझ करके कोई कुकर्म हो गया तो दोष लगेगा कि बिना जाने होने पर भी दोष लगेगा है कि नहीं है? जैसे मान लो आप घड़ी पहन रखे हो, घड़ी पहन रखे हो, आप किसी ने पूछा कि भाई समय कितना हुआ है, तो आपने बोल दिया 11 है ना, घड़ी देखा 11 बजा है, लेकिन बंद हो चुका है घड़ी, तो आपको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा, विचार करके बोलो, नहीं लगेगा। लगेगा है ना, भले ही कम लगता हो लेकिन लगता है, चाहे जानबूझ कर करो चाहे अनजान से करो, दोष तो लगेगा ही लगेगा, हाँ कम भले ही लगेगा तो। इसी प्रकार से जैसे जैसा महापुरुष बताते हैं ऐसे ही करना होता है। तो देखो ये परंपरा है, इतरा विज्यते तासा ऐसे बोलना है, आगे क्या बोलना है, मवावेपी, नहीं कि इतरा विज्यते तासाम अभावेपी ऐसा नहीं बोलना है, व्याख्यान के समय बोल सकते हो। कोई के तो ऐसे तोड़ करके भी छाप देते हैं प्रिंटिंग प्रेस में, तोड़ करके, ऐसा छापना भी नहीं चाहिए और पढ़ना भी नहीं चाहिए। और तो देखो कहते हैं अनेक दर्पण आदित्य, आदित्य तो एक ही है आकाश का, आकाश का आदित्य एक ही है, लेकिन दर्पण अनेक हो गए, दर्पण अनेक हो गए, तो जितने दर्पण है उतने आदित्य मालूम पड़ते हैं। आ दर्पण जैसा होगा आदित्य भी ऐसा मालूम पड़ता है ना? इसलिए बोलते हैं देखो अनेक दर्पण आदित्य दीप्ति, दीप्ति जो प्रकाश है वो भी अनेक हो जाएंगे। और वो जो प्रकाश दीवार में पड़ रहा है प्रतिफल लौट करके, लेकिन तो बीच बीच में संधि होगी कि नहीं, खाली जगह होगी ना, तो उसको कौन प्रकाशित करेगा? वो भी दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखेगा ना, हाँ वो आदित्य प्रकाश हो सामान्य हो गया। जहां पर दर्पण का प्रकाश पड़ रहा है दीवार में वो तो विशिष्ट हो गया, वो विशिष्ट हो गया। अब बीच में जो खाली जगह है संधि बोल रहे हैं, हाँ तो वो भी दिखता है, वो किससे दिखेगा? आदित्य प्रकाश से, सामान्य प्रकाश से दिखेगा, है ना? तो यहाँ पर ये भी समझना है, आगे बताएंगे। इसलिए आगे जो दो श्लोक है ना वो बहुत ध्यान देने की है। कहते हैं तासाम अभावेपि, है ना, बहु संधिसु कहा, वो बीच में जो संधि है उसमें आदित्य का प्रकाश है, और जिस समय नहीं छोड़ेंगे प्रकाश दर्पण का प्रकाश तब भी दीवार दिखाई देगा, वो दिखाई देगा। वो कौन सा प्रकाश हो गया भाई? सामान्य, वो भिन्न हो गया। देखो दर्पणस्थ सूर्य प्रकाश से आदित्य का जो प्रकाश सामान्य है वो भिन्न हो गया, ये बोलते हैं। तासाम अभावेपि, है ना, दर्पणस्थ प्रकाश न होने पर भी, हटाने पर भी, है ना, तब भी वो भिन्न दिखेगा, वो सामान्य प्रकाश हो गया। इतरा विद्यते, वो भिन्न दिखता है और सर्वत्र दिखेगा, पूरे दीवार में दिखेगा आदित्य का प्रकाश। टीका थोड़ी सी, या अनेका बहुदर्पण जन्याहा, अच्छा दर्पण अनेक हो गए है ना, दर्पण में सूर्य का प्रकाश प्रतिफलन प्रकाश, तो प्रतिफलन प्रकाश को किसने उत्पन्न किया? दर्पण ने किया, दर्पण ने किया, है ना। इसी प्रकार बुद्धि उत्पन्न करेगी किसको? वृत्ति को, वृत्ति है घटाकार पटाकार वृत्ति, तो जितनी वृत्ति होगी उतने प्रतिफलन हो जाएंगे, वो विशिष्ट चेतन हो गया। इसलिए बुद्धि वृत्ति को उत्पन्न किया, अब वृत्ति किसको उत्पन्न किया? विशिष्ट चेतन को उत्पन्न किया, ऐसा यहाँ पर समझ रहा है। तो बहुदर्पण जन्य, हाँ कौन हो गया बहुदर्पण जन्य? प्रकाश, हाँ क्योंकि बुद्धि तो एक ही है ना, वहां पर तो दर्पण अनेक हो गए, है ना, वहां तो दर्पण अनेक हो गए, लेकिन यहाँ पर के, यहाँ पर कौन है? बुद्धि, बुद्धि तो एक ही है ना, हाँ समझ में ना, तो अनेक दर्पण के जगह पर अनेक वृत्ति, ये समझना है। तो देख लो बहु दर्पण जन्या कुड्ये तत्र तत्र मंडलाकार विशेष प्रवाह दृश्यन्ते, विशिष्ट प्रवाह हो गए ना, विशिष्ट प्रकाश, क्योंकि तो दर्पण जैसा होगा उसका प्रकाश भी ऐसा होगा, हो गया ना। दर्पण जो गोलाकार हो तो उसका प्रतिमा भी कैसा दिखेगा? गोल दिखेगा। और चतुष्कोणाकार भी दर्पण हो सकता है ना, ये कह रहे हैं। इसलिए बोलना मंडलाकार विशेष प्रभाव, विशिष्ट प्रभाव दिखती है दीवार में दिखती है, तो ये तो हो गया। तो शंका थी कि इससे अतिरिक्त और कोई तो प्रकाश है ही नहीं है, कहते हैं अतिरिक्त प्रकाश है, वो कहां पर वास्ता है? बोलते हैं तासाम संधौ, संधि का अर्थ बीच मध्य, किसके बीच में, जो विशिष्ट प्रकाश के बीच बीच में जो है वो खाली जगह जो है न, दीवार के जो खाली जगह है वो किससे दिखेगी, हाँ सामान्य प्रकाश से दिखेगी। ये बोल वो भिन्न है, इतरा वाला भिन्न हो गया, हाँ तो कौन भिन्न, सामान्य प्रकाश रूप, वो सामान्य प्रकाश है, सामान्य प्रकाश है। तो खादित्य प्रभाव इसको बोलेंगे, आकाशस्थ जो आदित्य है उसकी प्रकाश है। व्यज्यते का अर्थ बोल दिया अभिव्यक्त उपलब्धते, अभिव्यक्त होता है, भासता है। अच्छा उस श्लोक में आया तासाम अभावे भी, उसका अर्थ बोलते हैं तासाम दर्पण जन्य प्रभाणाम, दर्पण से उत्पन्न होने वाला जो विशिष्ट प्रकाश, इसको यहाँ प्रभा शब्द से ले रहे हैं, वो जो विशिष्ट प्रभा है वो दे चली गई, तो कब चली जाएगी, दर्पण को हटा देंगे तो, दर्पण को हटा दिया, ये बोलते दर्पण अपगम, दर्पण को हटा दिया तभी विशिष्ट प्रकाश नहीं दिखे देगा, अथवा दर्पण को रहने दो, दर्पण के ऊपर कुछ ढक दिया, पुस्तक ढक दिया, कपड़ा ढक दिया, तब भी प्रकाश नहीं पड़ेगा, प्रतिफलन नहीं होगा, है ना। ये बोलते हैं दर्पण अपगम आदिना असत्व, है ना, दर्पण को हटा दिया आदि से क्या करेगा, ढक दिया, आदि से ले ढक दिया, है ना। तो इसी प्रकार यहां पर समझना है, देखो दृष्टांत में समझना है, दृष्टांत समझना है, तो कहीं भी जाओ विशिष्ट वृत्ति होगी कि नहीं होगी, केदारनाथ जाएंगे तो विशिष्ट ज्ञान होगा कि नहीं होगा, होगा ना, आंख बंद करेंगे तो तब भी मनोराज्य करेंगे। हाँ तो इसको आप ढक सकते हो, बुद्धि को नहीं ढक सकते हो, तो विशिष्ट दिखे भले ही दिखे, है ना, तो विशिष्ट दिखने पर भी सामान्य तक कैसे पहुंचेंगे, हमको पहुंचना है सामान्य तक, है ना, लेकिन अभी शंका किया ना, तो ये जो विशिष्ट ज्ञान हो रहा है इससे अतिरिक्त तो कहाँ सामान्य है, सामान्य तो है ही नहीं, लेकिन आत्मा को जो सब शास्त्र कहता है सत, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, लेकिन व्यवहार में जिसको हम सत्य समझते हैं, है ना, ऐसा सत्य को शास्त्र नहीं बोलते आत्मा के बारे में जब बोलेगा, पकड़ में है ना, तो व्यवहार में जैसा चित समझते हैं, है ना, चित हो गया ज्ञान, भाई व्यवहार में ज्ञान से हम किसको समझ रहे हैं, विशिष्ट को समझ रहे हैं, भाई ये घट है, पट है, मठ है, पुत्र है, पिता है, ये जो ज्ञान हो रहा है ना, तो यही तो ज्ञान है, इससे अतिरिक्त तो कहाँ ज्ञान है, इससे अतिरिक्त तो आप कहते हो कि सामान्य ज्ञान है, कूटस्थ ज्ञान है, वहां तक तो हमारी बुद्धि नहीं पहुंच रही है, पढ़ में है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार शास्त्र जिसको आनंद शब्द से बोलते हैं आत्मा का स्वरूप, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, लेकिन व्यवहार में हम आनंद से किसको समझ रहे हैं, रसगुल्ला खाने पर जो आनंद हो रहा है, समझ में है कि नहीं, सुखाकार वृत्ति रूपी आनंद समझ रहे हैं, इससे अतिरिक्त जो आनंद कह रहे हो कहां आनंद है वो, तो हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारी दृष्टि तो इसी में है, विशिष्ट में, ये जो विशिष्ट को देखने का अभ्यास पड़ गया है ना हमारा अनादिकाल से, इसलिए हम विचार नहीं कर पा रहे कि इससे अतिरिक्त कोई सत्य है, भाई व्यवहार में सत्ता मतलब क्या समझते हैं, ये घट है, पट है, ये जो है बोलते हैं, तो घटपट को छोड़ करके है तक बुद्धि तो नहीं जा रही है, तो क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि अभ्यास पड़ गया है ना, विशिष्ट को ग्रहण करना, विशिष्ट को देखना, यही हमारा अभ्यास पड़ गया है अनादिकाल से, देखो और ऐसे भी समझ लो भाई, विशिष्ट बन करके रहने का अभ्यास ही पड़ गया है, नहीं पढ़ा है, बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, बाकी लोगों की बातें छोड़ो, वेदांत सुनते समय भी सत्संग में आने पर भी हमारी क्या अभिलाषा रहती है? यहां पर भी हम विशिष्ट बन कर रहे हैं, नहीं होती है क्या? बोलो, होती है ना भाई। गृहस्थी की बात तो छोड़े, हमारे महात्मा की बात भी हम बोल देते हैं, है ना भाई। घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, तो किस रूप से रहने के लिए संन्यास लिया? विचार करके देखो, है कि नहीं? साधना की बात बोल रहे हैं। इसी में कोई बड़ा आश्चर्य लगता हमको, तो घर भी छोड़ दिया मान लो, है ना, किसको प्राप्त करने के लिए छोड़ा? अब भगवान कैसा है, सामान्य है कि विशिष्ट है? है कि नहीं? तो किसको प्राप्त करने के लिए छोड़ा? सामान्य सत, सामान्य चित, सामान्य आनंद, पकड़ में है कि नहीं? आज छोड़ दिया, महात्मा बन गया, अभी कैसा रहना चाहता है? सामान्य रूप से रहना चाहता है कि विशिष्ट रूप से रहना चाहते हैं? बोलो, है कि नहीं? कोई संन्यास ले लिया तब भी अभिलाषा रहती है कि हम जो है भाई महामल्लेश्वर बन जाए, विशिष्ट पूजा होगी, बढ़िया आसन, बढ़िया भोजन मिलेगा, तो कहां सामान्य बनकर रहना चाहते हैं? बोलो, यदि हम सामान्य बनकर रह नहीं सकते तो सामान्य को कैसे प्राप्त करेंगे? बोलो, बड़ा कठिन है कि नहीं, है ना? इसलिए हमारी दृष्टि का जो विषय बन गया ना विशिष्ट, है ना, इसको जब तक नहीं छोड़ेगा, दृष्टि का विषय जब तक विशिष्ट बनता जाएगा ना, तो हमारे दृष्टि में सामान्य नहीं आएगा। बड़ा कठिन है। इसलिए हमारा जो प्राप्तव्य, हमारा ज्ञेय कैसा है? सामान्य है, विशिष्ट नहीं है। इसलिए बोल दिया, देखो ये अलग है। तो आगे तृतीय श्लोक में इसी बात को बोलते हैं, दृष्टांत सिद्धम अर्थम द्राष्टांतिके। तो कैसे घटाना है दृष्टांत को? दृष्टांत में आपको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से बोल दिया, तो श्लोक के माध्यम से हम कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।